श्रोताओं नमस्कार। हम शुरू करने जा रहे हैं यूरोपीय इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है यूनान की स्वतंत्रता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए शुरू करते हैं। यह सच है कि समस्याएं जटिल थी, पर उन्हें समझना आज उतना कठिन नहीं रहा जितना कि उस समय रहा होगा। दूसरी बात यह है कि इतिहासकार के लिए उन्हें समझना एक राजनीतिक की अपेक्षा आसान है, क्योंकि वह तथ्यों का तटस्थ होकर वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। इस समस्या को समझने के लिए एक संक्षिप्त सर्वेक्षण आवश्यक है। 15वीं शताब्दी से ही तुर्की साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया था। कस्तुतुनिया के पतन के बाद वियना तक के पतन की नौबत आ गई। सुलेमान महान के शासन के समय तुर्क साम्राज्य सारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। सारे दक्षिण पूर्व यूरोप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया था। दक्षिण पूर्व यूरोप की ईसाई जातियां, जिसमें स्लाव, बुल्गार, सर्व आदि विभिन्न भाषाओं और राष्ट्रीयताओं के लोग थे, मुसलमानों और तुर्कों के प्रभाव में आ गए थे। तुर्कों ने भारत से मध्य यूरोप तक एक बड़े भाग को जीत लिया था, लेकिन न तो वे स्वयं उन स्थानों की सभ्यताओं में घुल मिल गए तथा उन्हें विजय मिली, और न ही विजित लोगों को अपने में मिला सके। इस तरह उन्होंने शुरू से अंत तक एक विदेशी आक्रमणकारी का चरित्र बनाए रखा। तुर्कों की सर्वोच्चता 17वीं शताब्दी तक फिलिप द्वारा तुर्क नौसेना के लेपांटों में हुई पराजय के बावजूद अक्षुण बनी रही। सबसे पहली चुनौती उसे समुद्री क्षेत्र में इंग्लैंड की नौसेना से मिली, लेकिन तुर्क नौसेना की हालत खराब होने के नाते इंग्लैंड को किसी स्पर्धा का डर नहीं रहा। स्थल पर सबसे पहले रूस के शासक पीटर ने तुर्क को पराजित किया, फिर काला सागर के एड्रियाटिक सागर तक तुर्क शासन निर्बाध गति से बना रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले रूस की जारीन कैथरीन द्वितीय ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और दक्षिण की ओर विस्तार करती हुई काला सागर के अजेब तक पहुंच गई। दूसरी ओर फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन की विजय वाहिनी ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत से सारे यूरोप को प्रेरित कर दिया। बालकन प्रायद्वीप, जहाँ कई राष्ट्रीयताओं के लोग मौजूद थे, जागने लगे। ईसाई बहुल बालकन में मुसलमान तुर्कों का शासन अब असह्य होने लगा, विशेषकर इसलिए कि यूरोप के प्रमुख ईसाई देश धर्म के नाम पर अपना राष्ट्रीय हित साधने के लिए ईसाइयों का पक्ष लेने लगे थे। संपूर्ण बालकन में राष्ट्रीय चेतना मानो अंगड़ाई लेकर जाग पड़ी। यही समय था जब तुर्क साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो रही थी। तुर्क साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के कारण बालकन समस्या पैदा हो रही थी। शक्ति शून्यता भरने के लिए कई शक्तियों ने प्रयास करना शुरू कर दिया। सबसे उचित और उपयुक्त दावा बालकन राष्ट्रों का था, लेकिन वियना कांग्रेस के बाद शुरू हुई राष्ट्रवाद विरोधी प्रक्रियावादी व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरी शक्ति रूस थी। रूस का शासक वर्ग स्लाव जाति का ही था। रूस की अधिकांश जनता ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी थी, और बालकन में ईसाई अधिकांश इसी चर्च को मानते थे। रूस बालकन राष्ट्रों से जाति, संस्कृति और धार्मिकता निकट दिखाकर वहां के राष्ट्र का पक्ष लेने के बहाने अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। तीसरी शक्ति ऑस्ट्रिया थी, जिसे कैम्पोफोर्निया की संधि के बाद नेपोलियन ने पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ दिया, तथा अब ऑस्ट्रिया रूस का बालकन में प्रतिद्वंदी था। इन सब का बालकन से निकट का संबंध था, लेकिन दूर दूर से फ्रांस था इंग्लैंड की बालकन में अपनी रुचि बनाए हुए था। फ्रांस तो अपनी संबंधों से महत्वपूर्ण बने रहने के लिए हस्तक्षेप करता था, पर इंग्लैंड का हित और अधिक गहरा था। पहले इंग्लैंड ने तुर्क का महत्व नहीं समझा था, लेकिन जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया तो अंग्रेजों को इस क्षेत्र पर प्रभाव का मूल्य समझ में आया। प्रधानमंत्री पिट ने पार्लियामेंट के मध्य पूर्व में रुचि पैदा कर दी। तब से इंग्लैंड की रुचि बढ़ती गई, क्योंकि इंग्लैंड का साम्राज्य दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में फैला था। वहाँ टोरी दल रूस से डर से पीड़ित होने लगे थे। इंग्लैंड के अधिकांश लोग रूस के दक्षिण विस्तार से डरते थे, और उन्हें भय था कि कहीं रूस खैबर दर्रे के रास्ते हिंदुस्तान में न घुस आए। रूसी नौसेना के काला सागर पहुंचने से के पूर्वी भूमध्य सागर और मिस्र पर उसका प्रभाव बढ़ रहा था। यह भी इंग्लैंड को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए इंग्लैंड रूस के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए तुर्क को बांध की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए तुर्की को, जिसे यूरोप का बीमार देश कहा जाता था, सिकमैन ऑफ यूरोप, इंग्लैंड अपने सहयोग का समर्थन का दावा देकर बराबर जीवित रखना चाहता था। इस तरह इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश की हित पतनमुखी मध्यम वर्ग के तुर्क साम्राज्य को बचाए रखने में था। उसकी यही दिलचस्पी इस समस्या को जटिल बनाती थी। इसी तत्वों की टकराहट के बीच पूर्वी समस्या पनपती सुलगती रही। अंत में उसका वही समाधान हुआ जो होना था। वेरसाई के संधि के बाद प्रायद्वीप में राष्ट्रीय तत्वों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इस समस्या की संक्षिप्त और आधारभूत व्याख्या यह हो सकती है कि परंपरागत साम्राज्य तुर्की, रूस और तथा ऑस्ट्रिया की परस्पर तथा इंग्लैंड से टकराहट और उभरते राष्ट्रवाद के कारण यह समस्या पैदा हुई थी। बाल्कन में मध्ययुगीन आधुनिक तत्व कई तरह से एक दूसरे से टकराते थे। सवाल नए बाजार बनाने और पुराने बाजारों की सुरक्षा की भी थी। कुल मिलाकर पश्चिमी यूरोप में आधुनिकता पूर्वी यूरोप में आसानी से जन्म नहीं ले सकी। कई दशकों से प्रसव पीड़ा के बाद नए बाल्कन का जन्म हो सका। 18वीं शताब्दी से ही तुर्कों के अधीन मुस्लिम और ईसाई जनता के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की अत्याचारी और भ्रष्ट शासन के खिलाफ सबसे पहले सर्बिया में कारजार्ज नामक व्यक्ति ने 1809 में आगे आया। रूस बाल्कन के ईसाइयों का संरक्षक माना जाता था। वह मदद के लिए तैयार था, लेकिन जब रूस पर नेपोलियन ने आक्रमण किया तो सर्बिया अकेले पड़ गया। रूस ने सर्बिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन मिलोस आब्रेनोविल के नेतृत्व में फिर विद्रोह हुआ। रूस मदद मिलती रही और 1830 तक सर्बिया का तुर्की से संबंध नाममात्र का रह गया, जो बाद में भंग ही हो गया। यूनान की स्वतंत्रता। हमारा अगला हेडिंग है यूनान की स्वतंत्रता। यूनान यूरोप की सभ्यता का केंद्र बिंदु माना जाता था। यूरोप के विकास को प्राचीन यूनान के आरंभ से माना जाता था। कहते हैं कि यूरोप की चिंतन धारा प्लेटो के विचार की टिप्पणी मात्र है। यह एक अतिशयोक्ति है, परंतु यह भी सत्य है कि ईसा पूर्व 5वीं और 6वीं शताब्दियों में यूनान में साहित्य, कला और विचार दर्शन जीवन क्रम में जितना विकास हुआ, उतना मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। बाद में सिकंदर ने एक साम्राज्य की स्थापना कर यूनान की सत्ता भारत में, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तक स्थापित की, लेकिन 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद यूनान का पतन शुरू हुआ। यूनान इस कदर बिखर गया कि हजारों साल तक यूनान के ज्ञान दूसरे देश सजोए रहे, स्वयं यूनान अपने अतीत से कटा और टूटा सा महत्वहीन बना रहा। 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण पर प्राचीन यूनान की प्रेरणा का प्रभाव सर्वविदित है। आश्चर्य यह है कि पुनर्जागरण स्वयं यूनान में नहीं हुआ। तब तक यूनान तुर्क के कब्जे में जा चुका था और 300 वर्षों तक यूनान अन्य बाल्कन प्रदेशों से बेहतर हालात में होते हुए भी गुलामी से में पिसता रहा। यूनानी तुर्की साम्राज्य की चाकरी करते हुए और यूनान के इतिहास चिन्ह ध्वस्त किए जाते रहे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों को भी प्रेरित किया। तुर्की के पतन ने इन्हें प्रोत्साहित किया और यूनान का जागरण शुरू हुआ। प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का साहित्य वह वाहक ग्रीक भाषा का पुनरुद्धार शुरू हुआ। अतीत की स्मृति अनुप्राणित करने लगी। 1819 में ओडेसा में हतैरिया फिलाइक नामक एक संस्था का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य तुर्क साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस संस्था की स्थापना व्यापारियों ने की थी। यह भी स्पष्ट है कि यूनान का मध्य वर्ग, जो तुर्क साम्राज्य की अपेक्षाएं अधिक प्रतिष्ठित था, अब महत्वाकांक्षी हो गया था। उसे स्वतंत्र अस्तित्व में अधिक लाभ की संभावना नजर आ रही थी। धीरे धीरे इस संस्था का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में उसके कई लाख अनुयायी हो गए। रूस से मदद की उम्मीद के साथ विद्रोह की तैयारी शुरू हो रही थी। उन्होंने यह भी चाहा कि बाल्कन के अन्य जातियों से मिलकर तुर्क के विरुद्ध विद्रोह हो जाए, लेकिन इन जातियों में आपसी द्वेष था और न तो वे अभी क्रांति के लिए तैयार थे और न ही यूनान का नेतृत्व स्वीकार कर सकती थी। यूनानी देशभक्तों को आशा थी कि उनके विद्रोह का नेतृत्व जार का मित्र करेगा, लेकिन इसी कारण रूस पूरी मदद करेगा, लेकिन अंतिम वाक्य में वह तैयार नहीं हुआ। विद्रोह का नेतृत्व अलेक्जेंडर विद्रोह का नेतृत्व अलेक्जेंडर इप्सिलांती ने संभाला और मेरिया ने और मोरिया में पहला विस्फोट हुआ। यूनानियों में तुर्कों के अत्याचार के प्रति इतना क्षोभ था कि उन्होंने तुर्कों की निशंस हत्या करनी शुरू कर दी। बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। तुर्कों ने सबक सीखने के बाद यूनानियों के धार्मिक नेता तथा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप पैट्रियार्क को कस्तुतुनिया में फांसी दे दी गई। कुछ तुर्क साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था, नहीं तो यूनानी विद्रोह को इस समय दबाना मुश्किल नहीं था। यूरोप के अन्य देश अभी तक निर्णय नहीं कर पाए थे कि वे यूनान के विषय में कैसा रुख अपनाएं। यूनान को सारे यूरोप में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हजारों साल बाद यूनान फिर से जागा था और अपने स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। सारे यूरोप में यूनानियों के समर्थन की सहायता के लिए समितियां गठित होने लगी। यूनान प्रेम तेजी से व्याप्त होने लगा और जन धन दोनों ही जुड़ने लगे। स्वयंसेवक अपने आप यूनान पहुंचने लगे और विद्रोह को जीवित रखने के लिए हर तरह के योगदान करने लगे। पश्चिमी यूरोप के प्रतिष्ठित नागरिकों के समर्थन ने यूनान की स्वतंत्रता में सबकी सहानुभूति जगाई। अब प्रख्यात कवि वायरन ने यूनानियों का पक्ष लेकर कलम की जगह हथियार उठा लिया तो सारा यूरोप स्नद्ध होकर देखता रहा। वायरन की यूनान में हुई मृत्यु यूनानियों को बहुत काम आई, क्योंकि अब इंग्लैंड की जनता यूनान के संग्राम से बहुत निकटता महसूस करने लगी। यूनान को युद्धरत घोषित करने के सिद्धांत उन्हें एक अलग इकाई मान लिया गया और अपनी मदद करना आसान हो गया। हताश होकर तुर्की के सुल्तान ने मिस्र के पासा मेहमत अली से मदद मांगी। मिस्री नौसेना इब्राहिम के नेतृत्व में यूनान पहुंची तो यूनानी प्रतिरोध टूटने लगा। मेरिया पर फिर तुर्क का कब्जा हो गया। पश्चिमी यूरोप के देश सुविधा में थे। होली अलायंस या चतुर्मुखी संधि की ओर से हस्तक्षेप मुश्किल था, फिर भी वे राष्ट्रवादियों के विरुद्ध युद्ध के लिए हस्तक्षेप करने के पक्षधर थे। यूनान के राष्ट्रवादियों के पक्ष में कैसा हस्तक्षेप करते। दूसरी ओर ईसाई सिद्धांतों की दुहाई देने वाले यूनान के ईसाइयों के विरुद्ध एक मुस्लिम साम्राज्य की कैसे मदद करते। यह भी निश्चित था कि यूनानियों की सफलता यूरोप के अन्य स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती। इसे मेटर्निख कैसे बर्दाश्त करता। जनता की सहानुभूति की परवाह न करते हुए उसने शासकों को यूनान की मदद करने से रोक रखा। लेकिन यूनान का प्रश्न पश्चिमी यूरोप के घर घर का प्रश्न बनते जा रहा था। सरकारों के लिए जनता का इस मुद्दे पर अवहेलना कर पाना मुश्किल था। रूस का जार निकोलस प्रथम यूनानियों की समान धर्मी होने के नाते मदद करना चाहता था। इस तरह रूस का प्रभाव भी बढ़ता और तुर्की साम्राज्य से उसकी पुरानी दुश्मनी भी निप जाती। लेकिन अकेले रूस को पहल करने देने के लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था। इंग्लैंड की नीति तुर्कों को छिन्न भिन्न होने देने से बचाने की थी और वह रूस के प्रभाव को बढ़ने से भी डरता था। जब इब्राहिम के मोरी में किए जाने वाले अत्याचारों की पुष्टि हुई तो इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैनिन ने पहल करने का निर्णय किया। उसने प्रख्यात सेनापति वेलिंगटन को सेंट पीटर्सबर्ग भेजा तथा रूस तथा इंग्लैंड ने मिलकर तुर्की और यूनानी विद्रोहियों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। तुर्क विद्रोह दबाने में सफल रहे थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब कुछ और करना जरूरी हो गया। तभी फ्रांस की सरकार ने यूनानियों की मदद में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस प्रकार चार्ल्स फ्रांसीसियो को संतुष्ट कर सकता था। 1872 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ और इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस ने पहली बार मिलीजुली कार्यवाही करने का निर्णय लिया। यह कदम अप्रत्याशित था। इंग्लैंड की फ्रांस और रूस से सहयोग की सामान्य स्थितियां की गुंजाइश नहीं थी, परंतु पूर्वी समस्या में ऐसे बहुत से असाधारण कार्य भी हुए। तीनों देशों की संयुक्त नौसेना तुर्की भेजी गई। नवारिनों की खाड़ी इस नौसेना का मिस्र और तुर्की की नौसेनाओं से मुकाबला हुआ। युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए शुरुआत करने में दोनों ही दल हिचक रहे थे। अंत में अचानक ही एक गोली चल जाने से युद्ध शुरू करने का बहाना मिल गया और तुर्क तथा मिस्र की नौसेनाओं न केवल पराजित बल्कि नष्ट हो गई। तुर्की के लिए यूनानी को रोक पाना कठिन था, फिर भी इज्जत बचाने के लिए उसने मुआवजे की मांग की। सुल्तान ने काफिरों के विरुद्ध हत्ती शेरिफ या जिहाद करने की बात की। इसी बीच वेलिंगटन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो गया। वह नवारिनों के युद्ध से बहुत खुश नहीं था, वह एक अनुपयुक्त घटना मानता था। वैसे भी तुर्क का पतन इंग्लैंड के हित में नहीं था, इसलिए इंग्लैंड ने इस समस्या से अपने को अलग कर दिया। लेकिन रूस ने तुर्की के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। रूसी सेनाएं कस्तुनिया की ओर बढ़ने लगी। सुल्तान के लिए अब समझौता जरूरी हो गया। एडियानुपुल में 1829 में एक संधि और तुर्की की नामपत्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई। यूनानियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1830 की क्रांति ने उन्हें और बल दिया। अंत में 1832 में यूनान में एक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और बिबेरिया के ऑटो में यूनान का राजा बना दिया गया। इस प्रकार एक नए यूनान का जन्म हुआ। यह बाल्कन में राष्ट्रीय शक्तियों का उदय का आरंभ था। इसी समय मोल्डेविया और वैलेसिया को भी स्वायत्तता मिल गई थी। तीनों ही प्रदेश रूस की प्रति कृतज्ञ और इंग्लैंड की इच्छाओं के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। उसका भूमध्य सागर के निकट पहुंच जाने से इंग्लैंड की आंखों का कांटा बनता जा रहा था। अन्य स्थितियां भी रूस के पक्ष में होती जा रही थी। मिस्र के पासा मेहमत अली ने तुर्क सुल्तान की मदद की थी। वह मदद कारगर सिद्ध नहीं हुई। फिर भी पासा बदले में तुर्क को सीरिया का प्रदेश चाहता था। वहाँ का सुल्तान नहीं चाहता था, फिर भी उसका साम्राज्य और अधिक भंग हो। पासा ने जबरदस्ती की और उसकी सेनाओं ने सीरिया को रौंद डाला। अब खतरा यह पैदा हो गया कि सुल्तान की राजधानी पर फिर भी मेहमत अली का अधिकार हो जाएगा। तुर्क असहाय हो गया था। मौके का फायदा उठाकर रूस ने उसकी मदद का प्रस्ताव रखा। मरता क्या न करता, सुल्तान ने प्रस्ताव मान लिया। रूस तथा तुर्कों के बीच 1833 में उनकियार एस्केलेसी की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दार्दानेल का जलडमरू युद्धकाल में रूस और तुर्की युद्धपोतों के अतिरिक्त सब देशों के लिए बंद कर देने का प्रावधान किया गया। यह रूस की अभूतपूर्व कूटनीतिक विजय थी, क्योंकि अब उसकी नौसेना आक्रमण और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से बेहतर थी। पूर्वी समस्या में दिलचस्पी लेने वाले अन्य बड़े देशों में इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया अपने को ठगे महसूस कर रहे थे। उन्होंने विरोध भी किया, पर यह दो स्वतंत्र देशों की आपसी समस्या थी। क्या हो सकता था, रूस के प्रति सभी शंकालु हो गए। इंग्लैंड में तो रूस के डर से महामारी ही फैल गई। रूस की योजनाओं के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। उधर तुर्की और मिस्र में समझौता हो गया और सीरिया का मिस्र पर कब्जा माना जाने लगा था, मान लिया गया था। लेकिन एक पतनमुखी और दूसरे ओर उदयमान पड़ोसी के बीच समझौता भी कैसे हो सकता था। दोनों देशों के बीच फिर संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांस का शासक एक सक्रिय विदेश नीति के मौके की तलाश में था। उसने मेहमत अली की मदद करने का निर्णय किया। अब मिस्र का हौसला बुलंद था। उसके हाथों तुर्क फिर पराजित होने लगा। इंग्लैंड की दुविधा बढ़ गई। तुर्कों की जीत से रूस का प्रभाव बढ़ता और मिस्र की जीत से फ्रांस का। ये दोनों ही स्थितियां इंग्लैंड को स्वीकार्य नहीं थी, खास तौर से इसलिए कि पहली स्थिति में इंग्लैंड के उपनिवेश भारत पर स्थल मार्ग से खतरा बढ़ता और दूसरी स्थिति में भारत का जलमार्ग अवरुद्ध हो सकता था। रूस की सफलता मध्य एशिया और भारत के पश्चिमी में खतरा उत्पन्न करती और फ्रांस की सफलता नेपोलियन के मिस्र अभियान वाली स्थिति पैदा कर सकती थी। संयोग से इस समय इंग्लैंड का विदेश मंत्री पामर्स्टन था, जो एक दूरदर्शी और निर्भीक राजनीतिज्ञ था। उसने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। रूस इंग्लैंड से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तुर्की में हुई संधि के बाद ही रूस यूरोपीय ताकतों से युद्ध के संभावित खतरे के बारे में निश्चिंत सा था। उसने समझौते का रुख अपनाया। उसने पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों के साथ मिलकर स्थितियों पर विचार करने में रुचि दिखाई। इस प्रकार उनकियार संधि का एक पक्ष समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया और प्रसा भी इस तरह के समझौते के लिए तैयार थे। फिर तो रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने समझौता कर लिया और तुर्की तथा मिस्र की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रस्ताव किया। मिस्र को फ्रांस के सहयोग के कारण बहुत कुछ विश्वास था। उसने समझौते से इनकार कर दिया। फलतः मिले जुले प्रयास से सीरिया मिस्र से छिन गया। 1841 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, इसमें मिस्र को सीरिया पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। बदले में उसे तुर्क की नामात्र की प्रभुता के नीचे पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। संधिकर्ताओं ने मिस्र की स्वतंत्रता की गारंटी दी। लुई फिलिप को असम्मानित होना पड़ा। साल भर बाद जलडमरू में यातायात संबंधित वार्ता शुरू हो गई। इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया। यहाँ उनकियार की संधि के विरुद्ध यह निश्चित हुआ कि दार्डानेल और बास्फोरस के जलडमरुओं के मध्यों में किसी भी देश की युद्ध तोप नहीं चलेंगे। इस तरह रूस को जो भी प्राथमिकता मिली थी वह समाप्त हो गई। यह पामर्स्टन की नीतियों की सबसे बड़ी सफलता थी। प्रतिष्ठा अपने देश में और इंग्लैंड की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ गई। अब तुर्की को रूस के सहयोग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई। रूस ने भी इंग्लैंड से संबंध सुधारने में ही अपना भला समझा और प्रत्याशित रूस जार ने इंग्लैंड की यात्रा की और तुर्कों के खोखलेपन की चर्चा कर इंग्लैंड के साथ मिलकर बांट लेने का प्रस्ताव रखा। जार निकोलस ने तुर्क को यूरोप का बीमार कहा और कूटनीतिज्ञों के बीच यह प्रचलित मुहावरा बन गया। लेकिन यहाँ एक आधारभूत मतभेद यह था कि जार बीमार तुर्क की संपत्ति के बंटवारे की बात सोचता था, लेकिन इंग्लैंड इस बीमार को लाइलाज नहीं मानता था और तुर्क को जीवित रखने में दिलचस्पी रखता था। इसलिए जार के कई प्रयत्नों के बावजूद यह समझौता नहीं हो पाया और रूस तथा इंग्लैंड में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकने वाली मित्रता नहीं बढ़ पाई।